अंकिता मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी नज़रें अपने ही चेहरे पर टिकी थीं। वो कभी अपने बालों को संवारती, कभी साड़ी का पल्लू ठीक करती, तो कभी माथे की छोटी सी बिंदी को सीधा करती। उसने आईने में खुद को गौर से देखा और हल्की सी उदासी के साथ बुदबुदाई, क्या मैं सच में इतनी बकवास दिखती हूँ कि विशाल जी एक बार भी मेरी तरफ ठीक से नहीं देखते? उसने अपने गालों को हल्के से छुआ। चेहरे में तो कोई कमी नहीं, सब तो कहते हैं कि मैं अच्छी दिखती हूँ, फिर आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? वो एक पल के लिए चुप हुई, फिर खुद ही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, शायद उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ, या फिर वो इतने शर्मीले हैं कि नज़र उठाकर देखते ही नहीं। उसने फिर से अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और आईने में अलग अलग कोण से खुद को देखने लगी। अगर मैं दूसरी साड़ी पहनूं तो? नहीं, ये भी ठीक ही लग रही है, या फिर मुझे थोड़ा तैयार होकर रहना चाहिए? उसने गहरी सांस ली और आईने में अपनी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, नहीं अंकिता, हर बात के लिए खुद को दोष मत दे। किसी का तुम्हारी तरफ कम देखना ये साबित नहीं करता कि तुम खूबसूरत नहीं हो। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकही उम्मीद थी, शायद कभी विशाल उसकी तरफ उसी तरह देखे जैसे वो मन ही मन चाहती थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और विशाल अंदर आया। हमेशा की तरह वो साफ सुथरी शर्ट और गहरे रंग की पैंट में था। उसका चलने का अंदाज भी वैसा ही सख्त और नपातुला था, कंधे सीधे, चेहरे पर कोई भाव नहीं और आंखों में वही ठंडा सा रूखापन। कमरे में आते ही उसने बिना किसी भूमिका के कहा, कल हम मनाली जा रहे हैं, अपना सामान पैक कर लो। अंकिता, जो अभी तक आईने के सामने खड़ी थी, चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी, मनाली? लेकिन क्यों? विशाल ने अलमारी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, माँ ने हनीमून के लिए कहा है। अंकिता के चेहरे पर पल भर को हैरानी उभरी, वो धीमे से बोली, हनीमून के लिए मनाली? मुझे लगा था हम शायद विदेश जाएंगे। बस इतना सुनना था कि विशाल की आंखों में हल्की चुभन उतर आई, वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अंकिता अनायास पीछे हटी और दीवार से जा लगी। अगले ही पल विशाल उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी हथेलियां दीवार के दोनों तरफ टिक गईं, दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया। विशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, क्यों, मनाली में क्या कमी है? बहुत अच्छी जगह है, यू नो। उसकी सांसों की गर्माहट अंकिता के चेहरे को छू रही थी। विशाल थोड़ा झुका और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, वैसे मुझे तो तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं था, वो तो माँ ने जिद की। ये शब्द सुनकर अंकिता के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। ये मेरे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहते, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसी पल उसकी नज़र विशाल की आंखों पर टिक गई। उनमें गुस्सा था, नाराजगी थी, फिर भी इतनी नज़दीकी में खड़े होने के बावजूद उसने उसे छुआ तक नहीं था। अंकिता की धड़कनें तेज हो गईं, वो चाहकर भी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई, थोड़ी असहज, थोड़ी गर्म और जाने क्यों हल्की सी रोमांटिक भी। फिर विशाल अचानक पीछे हट गया। पैकिंग कर लेना, उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा और खिड़की की तरफ मुड़ गया। अंकिता वहीं दीवार से लगी खड़ी रही। उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे, जबकि दिल अब भी उसी एक पल में अटका हुआ था जब विशाल उसके इतना करीब आया था। अंकिता अलमारी के सामने खड़ी थी। कमरे के बीचों बीच खुला हुआ बड़ा सा ट्रैवल बैग रखा था। अगले दिन सुबह मनाली के लिए निकलना था, इसलिए वो चुपचाप जरूरी सामान समेट रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और बाहर से आती ठंडी हवा बार बार अंदर चली आ रही थी। हर झोंके के साथ अंकिता के हल्के रंग की साड़ी का पल्लू और उसके खुले लंबे बाल हवा में धीरे धीरे लहरा उठते। वो पूरी तल्लीनता से कपड़े तह कर रही थी, कभी शर्ट निकालकर बैग में रखती, कभी स्वेटर, कभी अपनी साड़ियां। उसके चेहरे पर एक मासूम सी खुशी थी। मन ही मन वो पहली बार पति के साथ कहीं बाहर जाने की कल्पना कर रही थी, लेकिन उस खुशी को जाहिर करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दूसरी तरफ विशाल खिड़की के पास खड़ा था, एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में मोबाइल। वो किसी बिजनेस कॉल पर था। हाँ, मीटिंग अगले हफ्ते शिफ्ट कर दो, मैं दो दिन दिन शहर से बाहर रहूंगा, बाकी फाइलें मेल कर देना। उसकी आवाज हमेशा की तरह गंभीर और सपाट थी। फोन पर बात करते करते उसकी नजर यूं ही घूमी और अचानक अंकिता पर जाकर ठहर गई। समय जैसे एक पल के लिए धीमा पड़ गया। अंकिता झुककर बैग में कपड़े रख रही थी। उसी वक्त हवा का तेज झोंका आया, उसके लंबे बाल हवा में बिखर गए, साड़ी का पल्लू भी हल्के हल्के लहराने लगा। विशाल की नजर अनायास उसी पर टिक गई। वो एकदम ठिठक गया। उसकी सांस जैसे पल भर के लिए रुक गई। हाथ में पकड़ा मोबाइल धीरे धीरे नीचे होने लगा। फोन पर सामने वाला बार बार उसका नाम पुकार रहा था, सर सर आप सुन रहे हैं? लेकिन विशाल जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में पहली बार कठोरता की जगह एक अनकही हैरानी उतर आई थी। उसी क्षण अंकिता ने बैग बंद करने के लिए झुकते झुकते महसूस किया कि उसका पल्लू कंधे से सरक गया है। वो तुरंत संभल गई, पल्लू ठीक किया और बिना पीछे देखे फिर सामान समेटने लगी। उसे अब भी पता नहीं था कि कुछ क्षण पहले विशाल की निगाहें उसी पर टिकी थीं। विशाल ने जैसे खुद को झकझोरते हुए गहरी सांस ली, नजर दूसरी तरफ फेर ली और दोबारा फोन कान से लगा लिया। लेकिन इस बार उसके शब्द पहले जैसे सहज नहीं थे। उसका मन कहीं और ही अटक गया था।